ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூர் அபவுட் டு லிசன் யதி பஞ்சகம் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிதம்பரானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
வோ மால் மே ஜாதா ஹை ஆர் சிர்ஃப் கரீதாஜி கர்த்தா ஹை, கோய் பி சீஸ் கரீதா ஹை, ரோக் ஹோ கயா. படா ஆச்சரிய ஹை நா? और आप आश्चर्य करेंगे, लाखों डॉलर का उसने कर्ज लेकर के वो खरीदारी की. क्रेडिट कार्ड, 8-10 क्रेडिट कार्डों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ खरीदने में किया, व्यर्थ बेकार. और उसने अपना कमरा दिखाया कि आप देखिए, भरा है सामान ठसाठस. और जो सामान खरीद करके लाया उसका लेबल भी नहीं हटाया कि खोल के भी नहीं देखा कि क्या है, बीमारी है. तो मुझे तब लगा कि बड़ी अजीब बीमारी है, बड़ा अजीब रोग है कि खरीद लिया और उसका उपयोग भी नहीं कर रहा है, क्यों ले रहा है. लेकिन जब संसार के लोगों को देखा तो मुझे समझ में आया, ये बीमारी तो सबको है, ये बीमारी तो हम सबको लगी हुई है. उसने क्रेडिट कार्ड से खरीदा उधार लेकर, और हम अपने पुण्य के बैंक को खाली कर रहे हैं और मांगे जा रहे हैं कि यह भी मिल जाए, हे भगवान ये भी मिल जाए, हे भगवान. मुझे नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि हमारी बैंक में कितना पैसा है, कि कितना पुण्य जमा है, हमें नहीं पता, हमको हिसाब किताब नहीं मालूम. और हम क्रेडिट किए जा रहे हैं कि हे प्रभु ये भी सुख मिल जाए, हम बाद में भर देंगे, कि आपके यहां आकर के दर्शन कर देंगे, कि गोवर्धन में परिक्रमा लगा देंगे. हम कहते हैं ये क्रेडिट करना है, कि आप हमारे संकल्प को पूरा करवा दीजिए कि हम तिरुपति में आकर के दर्शन करेंगे, कि मेरा ये संकल्प पूजा हो पूरा हो जाए कि हम यज्ञ करवा देंगे. ये क्रेडिट करना है, ये उधारी करनी है. और हम न जाने कितना उधार किए हुए हैं. रोज बोलते हैं कि ये हो जाए तो ये कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे, लेकिन न जाने कितना इतना कुछ मांग डालते हैं कि जिसको हम खोल के भी नहीं देखते, कभी एक बार भी नहीं ध्यान देते. कितना कर चुके हैं, उधारी होती चली जा रही है. विचित्र है स्वभाव, विचित्र है आदत. तो उसका इलाज हुआ. तो जो मनोवैज्ञानिक होते ना, साइकोलॉजिस्ट बोलते, साइकेट्रिस्ट, जी साइकेट्रिस्ट, उन्होंने इलाज किया और वह स्वस्थ हो गया. लेकिन हमारे इस रोग का इलाज कहां, कि हमारी इस बीमारी का इलाज कहां है? तो प्रेमपुरी आश्रम में आओ, इलाज करिए. यह सत्संग है, यहां इलाज हो सकता है. समझने की जरूरत है. जितना हमको चाहिए था परमात्मा ने उससे ज्यादा दिया. यह बात अगर समझ में आ गई आप संतुष्ट हैं. अगर आपको यह समझ में आ गया कि हमारी जरूरत इतनी थी और परमात्मा ने इतना दिया, तो झंझट यहीं से खत्म हो सकती है, अभी से खत्म हो सकती है, अभी खत्म हो सकती है. परमात्मा से सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं. भगवान के सामने लगने वाली लाइन खत्म हो सकती है, क्योंकि लाइन भगवान को लेने के लिए नहीं है, भगवान को पाने के लिए नहीं है, भगवान से मिलने के लिए नहीं है. आप मंदिरों में जाओ, देखो भीड़ देखिए, अरे राम राम, भगवान ही न मिले. और हम जैसा आदमी हो तो हमको तो दूर से ही निकल जाए दर्शन करके, कि ठीक है जरूरत क्या है पास ही में जाने की, दर्शन ही तो करना है. सिद्धि विनायक में दर्शन करना है, दूर से भी होते हैं ना, दर्शन करो और जाओ. अभी देखना कल से वो गणपति शुरू हो रहा है ना लालबाग में, लाइन लगने वाली है. क्यों, किस लिए बताइए? भगवान के लिए. तो गणेश तो सब जगह बैठने वाले हैं, वहीं क्यों? तो सुना है कि वहां जाने से कामना पूरी होती है. अब तो हालत खराब होगी, कामना पूर्ण होने वाली है, इच्छा पूरी होने वाली है. इसलिए चलो लगाओ लाइन, दो दिन खड़े रहना कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे, लेकिन इच्छा पूरी. ये इच्छाएं, ये लाइन खत्म हो सकती है. ये रोगी हैं सब, ये बीमार हैं, ये जितने लाइन में लगेंगे और जितने लग रहे हैं, ये सब रोगी हैं, सब बीमार हैं. और मुझे माफ करना, मैं तो बोलता हूं, कि प्रेमपुरी में कथा सुनने वाले भी अगर लाइन लगाते हैं तो रोगी हो, इलाज करवा तो रहे हो लेकिन हुआ नहीं है, ठीक नहीं हुआ है। दर्शन करो भगवान का, लेकिन किसी कामना की पूर्ति के लिए दर्शन करते हो तो रोग अभी भी बाकी है कि अभी भी शेष है। क्या कामना करना, क्या कामना की पूर्ति के लिए रोग लगाना, लाइन लगाना, कामना की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करना, जाने दो। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत, प्रारब्ध में जो होगा वो जरूर भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और इस बात को भूलना मत, विस्मृत मत करना कि जो है वो भुगतना पड़ेगा पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमारा ही किया हुआ कर्म रखा हुआ है, भोगना पड़ेगा। जब भोगना ही है तो क्यों ना मस्ती से अभी भोगा जाए, क्यों कल पर छोड़ा जाए, क्यों टाला जाए। और उस ईश्वर को सब पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं कि मीरा कभी लाइन नहीं लगाती। मीरा को कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जहां नाचती है परमात्मा वहीं प्रकट होता है। मीरा दर्शन करती है लेकिन लाइन नहीं लगाती। दर्शन इसलिए करती है क्योंकि उसे भगवान से मतलब है, उसे और किसी से मतलब नहीं, किसी चाह से मतलब नहीं, किसी अभिलाषा से मतलब नहीं। शिरडी जाओ आप, अरे राम राम, ये धीरूभाई आ जाए हैं और ये हमको लेकर के एक जगह गए पनवेल में, हे भगवान। गुरुवार के दिन एक कोई साईं बाबा का मंदिर है, हद हो गई अब तो, मैं क्या बताऊं आपको। तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी चलेंगे, मैंने कहा जरूर। तो हम लोग सुबह 4 बजे वहां पहुंचे और 4 बजे इतनी भीड़ की पूछो मत, पीछे बैठना पड़ा क्योंकि अभिषेक होता है देखने के लिए। चलो ठीक है, हमने कहा बढ़िया है बढ़िया, आनंद आएगा। फिर तो और हद हो गई कि अभिषेक तो हुआ ठीक है, फिर कुत्ता आया एक, मैं कुत्ता ही बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कुछ और है, कुत्ता ही डॉग, वो भी आपका बुलडॉग, वो छोटा सा प्यारा सा वो हा? कौन सा कुत्ता बोलते हैं उसको हा? जो भी समझ गए, छोटा सा नहीं होता एक बिलायती कुत्ता, बताइए। देसी भी होता तो थोड़ा श्रद्धा हो जाती मेरी हा? जो सफेद सफेद वाला वाला नहीं होता हा? समझ गए। और उस कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के उसकी पूजा कर रहे हैं, बताइए, हद हो गई, हद हो गई। और पागलपन की हद देखिए कि लोग प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहा है, हद हो गई। हम कितना गिरेंगे, गिरने की भी कोई सीमा हो सकती है, कितना गिरेंगे। और किसी ने यह करना शुरू किया और हमने मानना शुरू कर दिया, ये तो और हद है कि किसी एक के पागलपन में हम सब पागल हुए जा रहे हैं, कि किसी एक ने बेवकूफ बनाया और हम बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है परमात्मा ने हमको, वही वाली बात है कि कुएं में भांग पड़ी है, पिया और सब दीवाने हो रहे हैं। किसी को अकल नहीं है, थे साथ में मुझे, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको पालकी में बिठाया जा रहा है, सोने की पालकी में बिठा करके उसको लिए, कुत्ते को, हद है। क्या कहेंगे इसको, कौन सी मानसिकता है ये धर्म है? ये करने से धर्म बचेगा? कि अभी तक लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, अब तो कुत्तों की पूजा का भी करना पड़ेगा? कि मूर्तियां ही कहां कम थी। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ भाई कि उस कुत्ते का भी एक गुरु था, पता है आपको? हाँ सही, उस कुत्ते का भी गुरु था। कौन? कुत्ता ही था। और आश्चर्य क्या था पता है? उसकी समाधि बनी थी। ये राम राम राम। तो उस मरने वाले कुत्ते का नाम राम साई और जीने वाले कुत्ते का नाम कृष्ण साई। अब अभी भी परंपरा चल रही हो तो पता नहीं कि अब उसकी भी कोई पीढ़ी होगी, दूसरी आई होगी, होगा जरूर होगा, क्योंकि अब रोग लग चुका है ना। अब कुत्ता नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? ये धर्म है, इसको अध्यात्म कहते हैं आप। और इस अध्यात्म से आपको परमात्मा मिलेगा कि भगवान की कृपा मिलेगी? मैं बताऊं क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलेगा कि बाद में रोने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मरते समय खुद मत्था ठोकोगे कि हम कहां फंसे थे, अरे राम राम राम, कि कुत्ते की जगह थोड़ा भगवान याद कर लिया होता तो जीवन सुधर जाता, तब रोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन हम सोचते नहीं है, हम विचार नहीं करते, हम सिर्फ लाइन देखते हैं कि लाइन कहां जा रही है, हम सिर्फ यह देखते हैं कि भीड़ कहां जा रही है, हम विचार नहीं करते, हम सोचते नहीं है। गांव में था, एक जगह कथा हो रही थी, प्रवचन कर रहा था कि एक व्यक्ति उठकर के गया तो दूसरा गया, क्यों गया पता नहीं, कथा चल रही है, चालू है कथा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, कथा में रस मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति उठकर के गया, वहां देखा तो दूसरा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पता चला पूरी भीड़ जाने लगी, क्यों पता नहीं। मैंने पूछा भाई पीछे वाले से कि क्या है, बोले मालूम नहीं, तो तुम उठे क्यों, किस लिए उठे? तो बड़ा विचित्र जवाब मिला, इसीलिए कि पता नहीं है क्या है, यही देखने के लिए उठे। ये पागलपन नहीं है तो क्या है, कि हमें दूसरे के देखने पर आश्चर्य होता है, उसने देखा तो मैं भी देखूं, क्या है, क्या आश्चर्य, जाने दो, जिसने पहले देखा है अगर कुछ होगा देख करके बताएगा तो तुमको भी पता चल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, जिसने देखा है वो खुद ही बताने वाला है तुमको ये क्या है। लेकिन नहीं, हमसे नहीं ठहरा जाता, हमें तो भागने की जल्दी है, हमें दुनिया के किसी काम से मतलब नहीं है, दुनिया के किसी धंधे से मतलब नहीं है, किसी बात से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखने से मतलब है। कई बार आपने गौर किया होगा कि हम जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने भीड़ देखी, आपकी नजर जाती है, आपकी यात्रा से आपको मतलब नहीं, आप गाड़ी रोक लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या लेना देना, आगे बढ़ो। लेकिन स्वभाव है, हम मजबूर हैं, हमने आदत बना ली है कि भीड़ में हमारा इंटरेस्ट है, भीड़ में हमारी रुचि है, कि भीड़ है कुछ तो हुआ है, और इस भीड़ में, भीड़ को देखकर कुछ तो हुआ है कि बात ने हमको खत्म कर दिया, और जहां भीड़ देखते हैं हम वहीं ठहर जाते हैं, जहां भीड़ देखते हैं हम वहीं रुक जाते हैं, और बाद में क्या होता है, पूरा टाइम क्यों खड़े रहे पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, छोटे थे हम, आश्रम में थे, तो हम लोगों को मैं बता चुका हूं कि हमारे गुरुदेव भगवान डायरी मेंटेन करवाते थे कि रोज लिखो कितने बजे उठे। अब उठना तो 4 ही बजे, फिर भी लिखो कि 4 बजे उठे, और आप आश्चर्य करेंगे कि अगर 4:05 पर उठे हैं तो वो भी लिखना पड़ेगा कि 5 मिनट लेट उठे। लिखना भी पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, और 5 मिनट लेट हुए अगर उठने में तो उसकी सजा भी मिलेगी। तो हम लिखते थे कि फिर पूजा किया, स्नान किया, और मजे की बात, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा, आपने भी नहीं, कि हम लोगों को उठने के बाद से लेकर नहाना धोना सब शामिल करके हमारे पास में सिर्फ 25 मिनट होते थे, कि 25 मिनट में आपको शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके तैयार होकर के आ जाना चाहिए। ऐसा तो कहीं नहीं देखा मैंने कि नहाने के लिए भी आपको टाइम लिमिट दी जाए, कि शौचादि क्रिया के लिए भी आपको टाइम लिमिट दी जाए कि इतनी देर में होना चाहिए, कि ब्रश भी होना चाहिए, कि स्नान भी होना चाहिए, कि सब होना चाहिए, तैयार होकर के आ जाओ 4:30 बजे, 4 बजे से 4:30 बजे के बीच सब निपट जाए, 4:30 बजे से फिर योग की क्रिया, योगासन 4:30 से 5, ये सब हम लिखते थे, और फिर इतने बजे से इतने बजे तक प्रार्थना, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई, इतने बजे से इतने बजे तक भोजन। तो भोजन भी आपको आधा घंटे में निपटाना है, 11 से 11:30, 11 बजे घंटी लगने वाली है, 11 बजे के 10 मिनट तक पहुंच जाइए, 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो आपका भोजन गायब, खत्म, नहीं मिलेगा। 20 मिनट में भोजन कर लीजिए, 11:30 बजे से 12 बजे तक ठीक आराम करिए, कमाल। और हम लिखते थे। एक दिन क्या हुआ, अब आश्रम तो जंगल में नैमिषारण्य में, तो सांप बिच्छू तो वहां आम बात, और जो लोग गए हैं नैमिष में अभी आश्रम में, अभी भी जंगल जैसा लगता है ना, जबकि अब तो वहां इतने सारे कमरे के हॉल है, और जिस समय की मैं बात कर रहा हूं कमरे के नाम पर सिर्फ 2 कमरे थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, और सिर्फ पेड़ पौधे, सिर्फ पेड़ और पौधे, चारों तरफ हरा भरा आश्रम, बड़ा बढ़िया लगता था। तो हम डायरी मेंटेन करते थे, एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन को बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काटा तो सब इकट्ठे हो गए, और क्या बोलते, उसको झाड़ना उड़ना क्या क्या होता है सब किया गया, और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं। हमारा काम तो कुछ नहीं था, लेकिन भीड़ में इंटरेस्ट है ना, रुचि है, सब देख रहे हैं, तो हम भी खड़े हो गए, सब देखे जा रहे हैं। अब 2 घंटे चले गए उस देखने में, तो जब डायरी मेंटेन करना हुआ, अब 2 घंटे क्या लिखें, कि हर मिनट का हिसाब देना है, अब कैसे कहें कि 2 घंटे क्या हुआ, तो 2 घंटे छोड़ दिए, और गुरुजी के पास डायरी गई, उन्होंने देखा, बोली ये 2, तो मैंने कहा लिखूं क्या इसमें, बिच्छू ने काटा था। ओ, तो उन्होंने कहा तुमको काटा था। मैंने कहा नहीं, तो सामने वाले को काटा था, तो तुमको कोई काम करने के लिए कहा गया था, नहीं, तो तुम क्या कर रहे थे, खड़े थे, क्यों खड़े थे, आपको सजा मिलनी चाहिए। वाह क्या बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुआ किसी को कुछ, लड़ रहा है कोई, तुम तमाशा देख रहे हो, तुमको सजा मिलनी चाहिए। हुआ किसी के साथ कुछ, काम तुम्हारा कुछ नहीं है, और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। समय का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, समय को नष्ट कर रहे हैं आप, समय को बर्बाद कर रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम क्या करें अपनी रुचि का, अपनी आदत का, अपने स्वभाव का, कि हमें भीड़ में रुचि है, जहां देखा वहीं चल दिए, बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे चलो, क्यों, क्योंकि बड़े लोग जाते हैं। एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी एक मंदिर है वहां दर्शन करने जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, बोले बहुत लोग जाते हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, बहुत लोग जाते हैं इसका क्या मतलब है, बहुत लोग तो पागलपन करते हैं, तो तुमको अगर कल को पागल खाने में आगरा में भी बहुत लोग जाने लगे तो तुमको वहां भी रुचि हो जाए, कि कई लोगों को सुना है जाती हुई, चलो हम भी चलते हैं, और तुम्हारी जितनी फिल्में हिट होती हैं ये भीड़ में इंटरेस्ट के कारण ही तो है। मुझे कमाल का आश्चर्य होता है कि 200 करोड़ रुपए और 7 दिन में कोई कमा ले, ऐसा तो कोई धंधा नहीं दुनिया में, समझ में आया। लेकिन वो जानते हैं कि पागलों की भीड़ है यहां, एक बार खींच लो कैसे भी, सब आने वाले हैं, वही होने वाला है। और आपको पता नहीं है ये संसार हमारे पागलपन को कैश कर रहा है, ये माया हमारे पागलपन को कैश कर रही है, चाहे वो आध्यात्मिक पागलपन को कैश करने वाले लोग हों, चाहे वो सांसारिक। देखो पागलपन दोनों जगह एक ही जैसा है, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो सिनेमा हॉल में हो, चाहे वो सत्संग में हो, हम दोनों जगह पागलपन करते हैं, दोनों जगह बिना सोचे जाते हैं, हम भीड़ को देख करके निर्णय करते हैं, हम तमाशा को देख करके निर्णय करते हैं, विचार को देख करके नहीं, समझ करके नहीं, सोच करके नहीं, चिंतन करके नहीं, जबकि जरूरत सोचने की है, जरूरत चिंतन करने की है। तो लोग क्या करते हैं ये मत सोचो, ये मत देखो, हमें क्या करना चाहिए ये देखो। और अगर आपने ये देखना शुरू कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए, तो व्यवहार की, संसार की प्रत्येक परिस्थिति में आपको खुश होना आ जाएगा, प्रसन्न होना आ जाएगा। हम दुखी हैं क्योंकि भीड़ को देख करके चिंतित हैं, हम संकट में हैं क्योंकि भीड़ को देख करके डिस्टर्ब हैं। आप भीड़ को देखना बंद करो, अपने आप को देखना शुरू करो। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत, जो मिला उसी में आप न मुस्कुराएं तो नाम बदल देना वेदांत का। जो मिला उसी में आपको आनंद की लहरियां न उठने लगे तो भूल जाना वेदांत को। ये वेदांत की मस्ती है, ये अध्यात्म की मस्ती है, ये परमार्थ की मस्ती है कि यहां कुछ न मिले तो भी खुशी है। उस बच्चे को देखो, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन प्रसन्नता है, आनंद है, खिलखिलाहट है। उसको भूख लगी है, आपने दूध पिला दिया। उसको भूख मिली है, लगी है, आपने कुछ भी खिला दिया। उसको खाने में, उसको पाने में कोई रुचि, कोई च्वाइस नहीं है कि नहीं नहीं जब आप बोर्नवीटा का दूध पिलाएंगे तभी वो खुश होगा। नहीं, उसका पेट भर जाए फिर उसकी मस्ती देखो, उसका आनंद देखो, उसकी प्रसन्नता देखो, उसकी खिलखिलाहट देखो। वो बच्चा इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश कि न जाने क्या मिला होगा। और आप ध्यान रखना, जैसे एक दूध पीने के बाद में पेट भरा हुआ बच्चा मुस्कुराता है और मस्त रहता है, वो मस्ती हमारे जीवन में कभी नहीं आ पाती। हम दूध से ज्यादा हम पा जाते हैं, हम दूध से ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें खा करके और पेट भर लेते हैं, लेकिन वो खिलखिलाहट, वो मस्ती नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। उस बच्चे की अपेक्षाएं खत्म है, उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंतः, रोया, बच्चे का रोना नारायण हरि है। समझना इस बात को, बच्चे का रोना, बोलो बोलो जरा बोलो, अच्छा लगता है। एक तो देर से आते हो तुम लोग। नहीं नहीं, उमा बहन को नहीं कह रहा हूं, ये तो आई नहीं रही है आजकल, मैं दूसरों को कह रहा हूं। बड़ा खराब लग रहा है आजकल, सच बता रहा हूं आपको। अब की बार मैंने सोच लिया अगस्त महीने में मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं बोलने वाला हूं ऊपर। तो क्या कह रहा था मैं, नारायण हरि, बच्चे का रोना क्या है? महात्मा की तरह नारायण हरि करना है कि चिल्लाया, आवाज दिया कि कुछ दो, भूख लगी है। बच्चे ने पुकारा, रोया, और आपने उसकी भिक्षा में, पात्र में भिक्षा डाल दी कि दूध डाल दिया। और फिर देखिए उसकी मस्ती, फिर देखिए उसका आनंद, फिर देखिए उसका सुख। बस ऐसे ही हम भगवान के बच्चे बन जाएं और उसके सामने नारायण हरि करें। जो मिल जाए भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंतः, उसी भिक्षा को पा करके और मस्त हो जाइए, आनंद हो जाइए। वो तो हमेशा ज्यादा ही देता है। ध्यान रखना, बच्चे रोते हैं, मां हमेशा चाहती है कि बेहतर से बेहतर अपने बालक को दे। नहीं चाहती? बोलो बोलो बोलो, मां चाहती है कि नहीं? बच्चा रोता है तो मां बेहतर से बेहतर देना चाहती है कि नहीं? देना चाहती है। ऐसी परमात्मा भी, आप रोके तो देखो उसके सामने, सिर्फ रोके देखो, च्वाइस मत रखो, ध्यान रखना। और जो बच्चे मां के सामने च्वाइस रखते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। अगर बच्चे ने कह दिया नहीं मुझे यही चाहिए, तो फिर मां को प्रेम नहीं नफरत होने लगती है, चिढ़न होने लगती है। लेकिन बच्चा सिर्फ रोए तो मां बेहतर से बेहतर देना चाहती है, जितना उसके पास है उससे बेहतर देना चाहती है। ऐसी आप परमात्मा के पास च्वाइस मत रखो, आप सिर्फ रो दो ये चाहिए, माने अपेक्षा है कुछ, और वो परमात्मा अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर देता है, ज्यादा से ज्यादा देता है। और आप मानो ना मानो, उसने दिया है, पहले से बेहतर दिया है, पहले से ज्यादा दिया है, पहले से दिया हुआ है, तुम्हारे बिना रोए दिया हुआ है। आपने नहीं रोया फिर भी दिया हुआ है, आपने नहीं कहा, आपने नहीं पुकारा, फिर भी उसने संपूर्ण शरीर दे दिया, और क्या चाहिए? आप सिर्फ बच्चे की तरह रोइए और जो मिले मस्त होकर के, मस्त होकर के अनुभव कीजिए। और कल विचार करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।